110 मूसा मिस्रवासी। परमेश्वर ने इब्राहीम से वादा किया था कि वह अपने वादे के पुत्र इसहाक के माध्यम से कई राष्ट्रों का पिता बनेगा। लगभग 400 वर्ष बीत गए जब इसहाक का पुत्र याकूब अकाल के कारण मिस्र गया। उनका परिवार लाखों में हो गया है, लेकिन गुलामी में जी रहा है। इस दौरान मिस्र पर एक नए राजवंश का कब्जा हो गया, जो मिस्र के अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता था और उसने कभी जोसेफ के बारे में नहीं सुना था। फिरौन ने आदेश दिया कि इब्रानियों से पैदा होने वाले हर बेटे को नील नदी में फेंक दिया जाए। मूसा की मां ने उसे तब तक छिपाए रखा जब तक कि वह फिरौन की बेटी को नहीं मिल गया। 40 वर्षों तक उन्हें मिस्र राजघराने के तौर तरीकों का प्रशिक्षण दिया गया। फिरौन के क्रोध के डर से वह एक हिब्रू दास के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए एक मिस्री की हत्या करने के बाद मिस्र से भाग गया। अगले 40 वर्षों तक उन्होंने मिद्यान के एक पुजारी रुएल के लिए भेड़े चराईं, जिन्हें जेथ्रो भी कहा जाता है। तब परमेश्वर ने मूसा को इब्राहीम, इसहाक और याकूब के वंशजों को दासता से छुड़ाने के लिए मिस्र जाने के लिए बुलाया। मूसा से मुख्य बिंदु मिस्र। भगवान वफादार है। उसने इसराइलियों की हालत देखी और इब्राहीम, इसहाक और याकूब से किया अपना वादा याद किया। परमेश्वर ने अपने लोगों को गुलामी के बंधन से छुड़ाने के लिए मूसा को चुना। सदियों बाद भगवान ने अपने लोगों को पाप के बंधन से मुक्त करने के लिए नासरत के यीशु को भेजा। मूसा भगवान द्वारा बुलाया गया। मिस्र को मारने के बाद मूसा मिस्र से भाग गए और 40 वर्षों तक मेडियन में भेड़ बकरियां चराते रहे। इसराइल के बच्चे संख्या में इतने अधिक हो गए थे कि नए फिरौन को डर था कि वे खुद को किसी अन्य शासक के साथ जोड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने उन पर भारी बोझ डालने के लिए उनके ऊपर कार्य प्रमुखों को नियुक्त किया। उन्होंने फिरौन के लिए पिथोम और रामसेस नामक भंडार नगर बनवाए। परंतु जितना अधिक उन पर अत्याचार किया गया, वे उतने ही अधिक बढ़ गए और मिस्रवासी इसराइल के लोगों से डरते थे। एक दिन जब मूसा भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहा था, तब परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर, इब्राहीम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा का दुःख अवश्य देखा है और परिश्रम कराने वालों के कारण उनकी दुहाई भी सुनी है। मैं उनके कष्टों को जानता हूँ और उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाने और उस देश से निकालकर एक अच्छे और चौड़े देश में ले आया हूँ, जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। आओ, मैं तुम्हें फिरौन के पास भेजूंगा कि तुम मेरी प्रजा इसराइलियों को मिस्र से निकाल लाओ। मूसा को अपर्याप्तता महसूस हुई, लेकिन वह अनिच्छा से तब गया जब ईश्वर ने उसे अपने चमत्कारों की शक्ति दिखाई, ताकि मिस्रियों और इसराइलियों को यह विश्वास दिलाया जा सके कि ईश्वर नियंत्रण में है। मूसा के मुख्य बिंदु परमेश्वर द्वारा बुलाए गए। भगवान ने मूसा को जाने के लिए कहा, लेकिन मूसा ने कहा कि किसी और को भेज दो, जिससे भगवान नाराज हो गए। क्या हम परमेश्वर की इच्छा पूरी न करके उसे क्रोधित करते हैं जो उसने हमें प्रेरित शब्द बाइबल में दी है? सताए जाने के दौरान इसराइल की संतान बहुत बढ़ गई। पहली सदी के ईसाइयों ने भी ऐसा ही किया। मूसा उद्धारकर्ता। मूसा ने मिस्र में मिस्रवासियों के सभी तरीकों से प्रशिक्षित होने में 40 साल बिताए थे और अगले 40 साल एक चरवाहे के रूप में बिताए थे, जिसे ईश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से इब्राहीम, इसहाक और याकूब से वादा किए गए देश तक ले जाने के लिए प्रशिक्षित किया था। अगले 40 वर्षों तक उन्होंने भगवान के बच्चों को शारीरिक बंधन से बाहर निकाला। मूसा और हारून फिरौन के पास गए, शायद उसकी गोद ली हुई माँ के पिता या उसके भाई, और उससे अनुरोध किया कि वह इसराइलियों को जंगल में जाकर दावत करने और परमेश्वर की आराधना करने की अनुमति दे। फिरौन ने यह कहकर इनकार कर दिया, यहोवा कौन है कि मैं उसकी बात मानकर इसराइल को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता, और इसके अलावा मैं इसराइल को जाने नहीं दूंगा। इसके अलावा तू अब लोगों को ईंटें बनाने के लिए पुआल न देना, जैसा पहले को होता था, वे जाकर अपने लिए भूसा बटोरें। परंतु जितनी ईंटें उन्होंने पहले बनाई, उतनी गिनती तुम उन पर थोपना, उसे कभी कम न करना, क्योंकि वे बेकार पड़ी हैं। लोग यह कहते हुए बड़बड़ाने लगे, तूने हमें फिरौन और उसके सेवकों की दृष्टि में घृणित कर दिया है, और हमें मार डालने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। यह आखिरी बार नहीं होगा जब वे बड़बड़ाएंगे और शिकायत करेंगे। उद्धारकर्ता मूसा की ओर से मुख्य बिंदु। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी आराधना करें और लगातार शिकायत न करें। विपत्तियां। मूसा ने फिरौन को ईश्वर का संदेश देना शुरू किया, जिसे ईश्वर ने अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए सत्ता में आने की अनुमति दी। शुरू में तो कोई प्रभावित नहीं होता। तब फिरौन के जादूगर और अन्य लोग माफ करने लगे, परंतु फिरौन को नहीं। हर बार जब उसने मूसा के माध्यम से ईश्वर की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, तो उसके लिए ईश्वर को फिर से अस्वीकार करना आसान हो गया। उसने अपना हृदय कठोर कर लिया। प्रत्येक नई विपत्ति के साथ विनाश इतना बढ़ जाता है कि फिरौन के सेवकों ने उससे कहा, यह मनुष्य कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा? उन मनुष्यों को जाने दो कि वे अब के परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तुम अब तक नहीं समझते कि मिस्र नष्ट हो गया है? आखिरकार फिरौन को बहुत हुआ जब उसने कहा, मुझसे दूर हो जाओ, इस बात का ध्यान रखना कि दोबारा मेरा मुंह न देखना, क्योंकि जिस दिन तुम मेरा मुंह देखोगे उसी दिन मर जाओगे। मूसा ने कहा, जैसा तुम कहो, मैं दोबारा तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। मूसा ने इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकलने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। प्लेग से मुख्य बिंदु। मिस्रवासी जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। क्या हम परमेश्वर को एक प्यारे उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं या केवल परमेश्वर के बारे में जानते हैं? क्या परमेश्वर हमें जानता है? ईश्वर की प्रार्थना को लगातार अस्वीकार करने से हृदय कठोर हो जाता है, जिससे इसे फिर से अस्वीकार करना आसान हो जाता है, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। बदलते हुए। मिस्रियों के पहलौठे मर गए, और परिणामस्वरूप फिरौन ने मूसा से कहा कि वह इसराइलियों को ले जाएं और बाहर निकल जाएं। फसह मनाया जा चुका था और इसराइलियों ने मिस्र छोड़कर लाल सागर का सामना किया था। परमेश्वर दिन को बादल के खंभे में और रात को आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता था। फिरौन ने अपना मन बदल लिया और अपनी सेना को पीछा करने के लिए भेजा। सामने लाल समुद्र और पीछे फिरौन की सेना होने से इसराइलियों के मन में भय भर गया। मूसा ने उनसे आग्रह किया, डरो मत, दृढ़ रहो और प्रभु का उद्धार देखो जो वह आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उन्हें तुम फिर कभी न देखोगे। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम्हें केवल चुप रहना है। तब यहोवा ने सारी रात प्रचंड पुरवाई चलाकर समुद्र को पीछे खींच दिया और समुद्र को शुष्क भूमि बना दिया और जल दो भाग हो गया, और इसराइल के लोग सूखी भूमि पर होकर समुद्र के बीच में चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार बन गया। फिरौन की सेना ने इसराइलियों का पीछा समुद्र के बीच में किया और यहोवा ने मिस्री सेना को घबरा दिया, क्योंकि समुद्र रथों और सवारों को ढंककर अपने सामान्य मार्ग पर लौट आया। फिरौन की सारी सेना जो समुद्र में उनका पीछा कर रही थी, उनमें से एक भी न बचा। क्रॉसिंग ओवर से मुख्य बिंदु। इसराइलियों को शारीरिक दासता के बंधन से और अंततः उनकी प्रतिज्ञा की सांसारिक भूमि से मुक्ति मिल गई। यदि मसीह में विश्वास करने वाले लोग अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं, तो उन्हें अनंत दासता से मुक्ति दिलाकर ईश्वर के साथ उनकी वादा की गई भूमि स्वर्ग में ले जाया जाएगा। भय और ईश्वर में विश्वास की कमी के परिणामस्वरूप बुरे निर्णय होते हैं। एक नए राष्ट्र का पोषण और देखभाल। आखिरकार मुक्त। वे जंगल में 3 दिनों तक यात्रा करते रहे और पानी और भोजन की कमी के कारण बड़बड़ाने लगे। भगवान ने स्वर्ग से मन्ना नामक अच्छा पानी और भोजन प्रदान किया जो 40 वर्षों तक जारी रहा। फिर उन्होंने पानी के बारे में शिकायत की और बड़बड़ाया। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें यह याद नहीं है कि भगवान ने उनके लिए क्या किया और क्या कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के साथ उनके बीच निरंतर संघर्षों को हल करने की आवश्यकता है, जिसे मूसा ने अकेले ही करने का प्रयास करते हुए अभिभूत कर दिया था। जेथ्रो की सिफारिश पर मूसा ने मदद के लिए अलग अलग हिस्सों में लोगों को नियुक्त किया और लोगों ने थकना बंद कर दिया। एक नए राष्ट्र के लिए भोजन और देखभाल से मुख्य बिंदु। ईश्वर सदैव विश्वासयोग्य और न्यायकारी है और हमारे बड़बड़ाने से अप्रसन्न होता है। माउंट सिनाई। इसराइलियों को मिस्र छोड़ने और सूखी भूमि पर लाल सागर पार करने में 3 महीने बीत चुके थे। परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से बाहर निकाला था, मिस्र की सेना को नष्ट कर दिया था और उनके बहुत बड़बड़ाने के बाद भी उन्हें भोजन और पानी दिया था। अब वे माउंट सिनाई के सामने जंगल में डेरा डाले हुए हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, याकूब के घराने से यों कहना और इसराइल के लोगों से कहना, तुमने आप ही देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या किया और किस प्रकार मैं तुमको उकाब के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम सचमुच मेरी बात मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब देशों के बीच में तुम ही मेरी निज भूमि ठहरोगे। सभी लोगों ने एक साथ उत्तर दिया और कहा, जो कुछ प्रभु ने कहा है वह सब हम करेंगे। उन्होंने ईश्वर से मिलने के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। परमेश्वर ने मूसा को सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया ताकि वे मर न जाएं। पहाड़ पर गड़गड़ाहट और बिजली चमकी और घना बादल छा गया और तुरही का बहुत बड़ा शब्द हुआ, यहाँ तक कि जब लोग पर्वत के सामने खड़े थे तब छावनी के सब लोग कांप उठे। परमेश्वर ने मूसा को पर्वत की चोटी पर आने के लिए बुलाया। यहाँ परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दीं। मेरे सामने तुम्हारे पास कोई दूसरा ईश्वर नहीं होगा। तू अपने लिए कोई खोदी हुई मूरत वा किसी की प्रतिमा न बनाना जो ऊपर आकाश में वा नीचे पृथ्वी में वा पृथ्वी के नीचे जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी सेवा करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ईर्ष्यालु ईश्वर हूँ और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके पितरों के अधर्म का दंड पुत्रों से लेकर परपोतों तक को दंड देता हूँ, परंतु जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं दृढ़ करुणा दिखाता हूँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो कोई व्यर्थ उसका नाम लेता है यहोवा उसे निर्दोष न ठहराएगा। विश्राम दिन को स्मरण करके उसे पवित्र रखा करो, 6 दिन तक परिश्रम करना और अपना सब काम काज करना, 10 परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। इस दिन तुम या तुम्हारा कोई कामकाज न करना, बेटा या तेरी बेटी या तेरा दास या तेरी दासी या तेरा पशु या जो परदेशी तेरे फाटकों के भीतर हो। 6 दिन में यहोवा ने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सब बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने सप्त के दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहे। तुम हत्या नहीं करोगे, व्यभिचार प्रतिबद्ध है। तुम चोरी नहीं करोगे। तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना। तू अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना। तू अपने पड़ोसी की पत्नी या उसके दास या उसकी दासी या उसके बैल या उसके गधे या जो कुछ तेरे पड़ोसी की है उसका लालच नहीं करना। माउंट सिनाई से मुख्य बिंदु। यदि आप पूरी तरह से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं और उसकी वाचा का पालन करते हैं तो आप परमेश्वर के पवित्र लोग होंगे। यह आज भी वैसे ही लागू होता है जैसे तब लागू होता था। नए राष्ट्र के अनुसार रहने के नियम। इसराइलियों को 10 आज्ञाएं दी गई थीं। अब नए राष्ट्र पर शासन करने के लिए कानून, नियम और कानून जो कुछ समय पहले गुलाम थे। भगवान की पूजा करना, कोई मूर्ति न बनाएं, होम बलि चढ़ाने के लिए मिट्टी या पत्थर की एक वेदी बनाओ, लोगों के साथ काम, हिब्रू गुलाम, बेटी बेचो, लड़झगड़कर संघर्ष करना, चोरी, माता पिता को कोसना, न्याय, लालच, जादूगरनी, जानवरों के साथ सेक्स, पैसे उधार देना, भगवान और शासकों के प्रति सम्मान। नए राष्ट्र के लिए नियमों से मुख्य बिंदु। परमेश्वर के लोगों को कानूनों, नियमों और विनियमों की स्पष्ट समझ के आधार पर दूसरों के साथ न्याय और दया का व्यवहार करना चाहिए। वाचा और तंबू। मूसा ने लोगों को प्रभु का वचन और उसके सभी नियम बताए। उसने उन्हें लिखा, एक वेदी बनाई, भगवान को होम और शांति प्रसाद चढ़ाया और वेदी पर और लोगों पर खून छिड़का। तब उसने वाचा की पुस्तक ली और लोगों को सुनाई और उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम करेंगे और आज्ञाकारी रहेंगे। और मूसा ने लोहू को लेकर लोगों पर फेंक दिया और कहा, देखो उस वाचा का लोहू जो इन सब वचनों के अनुसार यहोवा ने तुमसे बांधी है। परमेश्वर ने कहा, इसराइलियों से कहो कि वे मेरे लिए भेंट लाएं। तुम्हें हर उस व्यक्ति से मेरे लिए भेंट प्राप्त करनी है जिसका हृदय उसे देने के लिए प्रेरित करता है। स्वतंत्र इच्छा की भेंट मुफ्त में दी गई इन वस्तुओं से परमेश्वर ने मूसा को एक तंबू बनाने के लिए विस्तृत निर्देश दिया जिसमें एक जगह के रूप में वह उनके साथ रह सके। ए डॉट उसकी गवाही रखने के लिए दया आसन से ढका हुआ संदूक, बी डॉट रोटी के लिए टेबल, सी डॉट स्वर्ण दीवट, डी डॉट कांस्य वेदी। वाचा और तंबू से मुख्य बिंदु। परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बांधी जिसे मूसा ने उन्हें पढ़कर सुनाया और उसे उस संदूक में सुरक्षित रख दिया जहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। उन्होंने उत्तर दिया, हम वह सब कुछ करेंगे जो यहोवा ने कहा है, हम मानेंगे। वाचा में शामिल लोग बलिदान के रक्त के संपर्क में आए। मसीह ने उन सभी के साथ एक नई वाचा बनाई है जो बपतिस्मा के माध्यम से रक्त के संपर्क में आकर उस पर भरोसा करते हैं और उसका पालन करते हैं जिससे ईश्वर उन्हें मसीह के राज्य में डाल सके। हमें पीछे नहीं हटना चाहिए बल्कि वफादार बने रहना चाहिए, उसकी इच्छा पूरी करनी चाहिए, उसके वचन को अपने हृदय में संग्रहित करके परिश्रमपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, फिर वह अनंत जीवन देगा। पूजा और पुजारी की वस्तुएं। ईश्वर ने पुजारियों को उनके कर्तव्यों का पालन करते हुए पूजा अर्चना, दिखावे और कार्यों के बारे में निर्देश देना जारी रखा। रंगबिरंगे परिधानों में वे लोग दिख रहे थे जो परमेश्वर के पुजारी थे। अन्य वस्तुएं उनके कर्तव्य पालन के लिए थीं। निर्णय का कवच, एपोद, लबादा, चेकर्ड कोट, पगड़ी, कमरबंद, अभिषेक तेल एवं धूप बनाने के लिए विशिष्ट सूत्र दिए गए। उन्हें शरीर पर व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में उपयोग नहीं किया जाना था। हारून और उसके पुत्रों का अभिषेक करो और उन्हें पवित्र करो ताकि वे याजक के रूप में मेरी सेवा करें। इसराइलियों से कहो, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए मेरा पवित्र अभिषेक तेल होगा। इसे पुरुषों के शरीर पर न डालें और एक ही फॉर्मूले से कोई तेल न बनाएं। यह पवित्र है और तुम्हें इसे पवित्र मानना है। जो कोई उसके समान सुगंध बनाए और जो कोई उसे याजक को छोड़ किसी और पर लगाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। उनके बलिदान और पूजा का दिन स्थापित किया गया था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कहो, तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए मेरे और तुम्हारे बीच एक चिन्ह ठहरेगा जिससे तुम जान लो कि मैं यहोवा हूँ जो तुम्हें पवित्र करता है। विश्राम दिन का पालन करो क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र है। जो कोई उसे अपवित्र करे वह अवश्य मार डाला जाए, जो कोई उस दिन कोई काम करे वह अपने लोगों में से अलग कर दिया जाए। पूजा और पुजारी वस्तुओं से मुख्य बिंदु। भगवान के सामने आने के लिए व्यक्ति को पवित्र होना चाहिए और भगवान के लिए आवश्यक कपड़े पहनाए जाने चाहिए। ईसाइयों के लिए उन्हें ईश्वर द्वारा मसीह के शरीर में डाला जाना चाहिए और धार्मिकता का वस्त्र पहनाया जाना चाहिए। मूर्ति पूजा और परिणाम। लोगों ने परमेश्वर को मूसा को पहाड़ पर बुलाते हुए सुना। वे उनकी उपस्थिति में परमेश्वर से भयभीत और डरे हुए थे, लेकिन जल्द ही उन्हें भूल गए। झूठे बलिदान और पूजा पद्धतियां स्थापित की गईं, जिससे उन्हें भयानक परिणाम मिले, क्योंकि वे उनके साथ परमेश्वर की वाचा का पालन करने में विफल रहे। वे कितनी जल्दी भूल गए। जब मूसा पर्वत पर थे, उन्होंने एक सुनहरी मूर्ति बनाई और उसे मिस्र की दासता से मुक्ति दिलाने वाले देवता के रूप में पूजा की। मूसा बहुत अप्रसन्न हुए और बोले, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, परंतु अब मैं यहोवा के पास चढ़ूंगा, शायद मैं तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सकूं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जिस किसी ने मेरे विरुद्ध पाप किया है, मैं उसे अपनी पुस्तक में से मिटा दूंगा। अब जाओ और लोगों को उस स्यान पर ले चलो जिसके विषय मैंने कहा है, और मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। हालांकि जब मेरे दंड देने का समय आएगा, तो मैं उन्हें उनके पाप के लिए दंड दूंगा। और परमेश्वर ने लोगों पर उनके बनाए हुए बछड़े के कारण विपत्ति भेज दी। वे दिन में बादल के खंभे और रात में आग के नेतृत्व में इब्राहीम, इसहाक और याकूब से वादा किए गए देश में जाने के लिए सनाई के जंगल को छोड़ देते हैं। मूर्ति पूजा और परिणाम से मुख्य बिंदु। जिसने भी तब और अब बिना क्षमा के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, उसका नाम जीवन की पुस्तक से मिटा दिया जाएगा। मसीह में उन सभी के लिए क्षमा है जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं।